Hare Krishna, the Sunday Love Feast given on the topic Ramayana ki Ansuni Kathayen at ISKCON Dwarka on 2nd April 2017 by myself Prashant Mukundadas.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जया रुक्मण द्वारकाधीश जया रुक्मण द्वारकाधीश रुक्मण द्वारकाधीश जया रुक्मण द्वारकाधीश जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जयो सुदर्शना जयो जगन्नाथा जयो जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय गौरानिताय जयो गौरानिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो इस मंत्र का अर्थ है रामाय राम भद्राय। भगवान राम का नाम ही अपने आप में मंगलकारी है, भद्र मतलब मंगल। जब भी भगवान राम का स्मरण किया जाएगा सदा ही मंगल विराजमान होगा। इसलिए इस्कॉन केंद्रों में सुबह जो आरती है उसको बोलते हैं मंगल आरती। मंगल आरती करने से जो करेगा मंगला, नहीं रहेगा कंगला, ऐसा करके बोलते हैं। क्योंकि इसलिए मंगला मतलब कंगला ऐसे लोग बोलते हैं, इसका मतलब ऐसा कोई प्रमाणिक नहीं है, परंतु भक्त लोग बोलते हैं। इसका कारण यही है कि मंगल आरती मतलब भगवान के नामों का उच्चारण सुबह सुबह करने से सारा दिन मंगलमय रहता है। और जब मंगल रहेगा तो जिस पर नारायण की कृपा होगी उस पर लक्ष्मी की कृपा तो ऑटोमेटिकली होगी। रामचंद्राय वेद से, और जो रामचंद्र है ये सारे वेद बताते हैं कौन है, रघुनाथाय। रघु परंपरा में आने वाले, रघु वंश के नाथ हैं, स्वामी हैं, और साथ में हम सब अनाथों के भी नाथ। तो बोलते हैं इस्कॉन केंद्र एक प्रकार का अनाथ आश्रम भी है। क्योंकि अनाथ आश्रम इसलिए है क्योंकि इस अनाथ आश्रम में सभी को सबके माता पिता प्रदान किए जाते हैं। कोई बोल सकता है मेरे माता पिता से मेरा संबंध अच्छा नहीं है, कोई बोल सकता है कि मेरे तो पैदा होते ही माँ बाप का पता नहीं, कोई बोल सकता है कि मैं तो अडॉप्ट किया गया था। और बहुत सारे लोगों के माँ बाप होते हुए भी कुछ लोग कहते हैं वो बुजुर्ग थे, वो गुजर गए, वो चले गए, अभी मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। तो जिसका कोई नहीं होता ऐसा नहीं है, जिसके सब कोई होते हैं उसका भी भगवान ही होता है। जिसके सब कोई है वो भी मदद नहीं करने वाले हैं, मदद करने वाले तो नाथ तो कौन है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा हमारे इस्कॉन केंद्र अनाथ आश्रम है, जितने भी संसार के अनाथ हैं उन सबको उनके नाथ प्रदान किए जाते हैं। कौन से नाथ? रघुनाथ। कौन से नाथ? जगन्नाथ, गोपीनाथ, सबके नाथ, गोपियों के नाथ, जगत के नाथ और रघुनंदन रघुनाथ। सीता है पते है ते नमः, और सीता महारानी के कौन है? पति हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं। तो खाली सीता महारानी के पति हैं, हमारे नहीं है। इस संसार की कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष ये नहीं कह सकता कि भगवान श्री राम मेरे पति नहीं। पति शब्द का अर्थ जानते क्या है? पालन करता इति पति। सीता महारानी का पालन करने वाला जो है वो उनका पति है। तो इस संसार में हम सबका पालन करने वाले कौन? रघुनाथ। तो रघुनाथ हमारे पति नहीं हुए। कोई बोल सकता है मैं तो पुरुष के शरीर में हूं, कोई कह सकता है मैं स्त्री के शरीर में हूं, कोई चींटी के शरीर में, कोई हाथी के शरीर में, किसी भी शरीर में रहें, वृक्ष के शरीर में रहें, जलचर के शरीर में रहें, लेकिन रक्षा करने वाले पालन करने वाले तो हमारे कौन है? रघुनाथाय ते नमः, ऐसे रघुनाथ को हम प्रणाम करते हैं। तो भगवान की कथाएं सभी को जीवन प्रदान करती हैं। रामचंद्र की कथाएं तो अधिकतर प्रियतम है क्योंकि भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान कृष्ण कैसे हैं? लीला पुरुषोत्तम। इसलिए भगवान के जन्म उत्सव को नौमी बोलते हैं राम, और सीता महारानी के उत्सव को भी बोलते हैं सीता नौमी। लेकिन जो जो भगवान कृष्ण है वो आते हैं कब? कृष्ण अष्टमी, वो आठ। और राधा रानी भी कब आती है? अष्टमी। तो जिस प्रकार से एक कृष्ण की अंतरंगा शक्ति राधा रानी है, उसी प्रकार से राम की अंतरंगा शक्ति सीता महारानी है। तो इनका जन्म कर्म कैसा है? दिव्य है। ये कोई माता पिता के पेट से या वीर्य से या गर्भ से उत्पन्न होने वाले नहीं है। भगवान कैसे हैं? जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यवेति तत्पुतः त्याक्तम देहम पुनर्जन्मम नेति ममेति सुअर्जुनः। भगवान अर्जुन को कहते हैं अर्जुन मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य हैं, और कोई व्यक्ति अगर इसको ध्यान पूर्वक श्रवण करके अपने जीवन को पूर्ण बनाता है तो उसका इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा। तो ऐसे भगवान राम जो हैं वो नौमी के दिन आते हैं। पता क्यों? क्योंकि नौ का जो मैथमेटिकल टेबल है, 9 1 9 2 8 + 1 करेंगे तो कितना आएगा? 9 3 सेवन प्लस टू करें कितना आएगा। भगवान नौ की मर्यादा को तोड़ते ही नहीं है, इसीलिए उनका जन्म नौमिक होता है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं मैं कौन हूं, गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष तो मैं हूं, मैंने राम के रूप में अपना मर्यादा अवतार दिखाया, चैतन्य के रूप में मैंने अपना प्रेम अवतार दिखाया, लेकिन राम मैंने कृष्ण के रूप में अपना लीला अवतार दिखाया। इसलिए वो अष्टमी को आते हैं। अभी आठ का अगर हम मैथमेटिक टेबल देखें तो एट वन जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्स प्लस वन सेवन, आठ से घटकर एक रह गए सात आ गया। अगर एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, दो और चार छः, सात से घटकर छः। तो भगवान घटते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं जो हूँ लीलाएं करता हूं। तो इसलिए भगवान ऐसी दिव्य लीलाएं कर रहे हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि वो भगवान स्वयं भगवान है। और भगवान राम उनके मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हैं भगवान कृष्ण के। ब्रह्म संहिता में वर्णन किया गया है भगवान के बारे में, भगवान राम के बारे में कहते हैं आनंद चिन्मया रसात्मया मनसो या प्राणिनाम प्रतिफलम स्मरात्मुपेत्य लीलायतेन भुवनानि जयत्य जस्त्रम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्राणियों को नित्य नित्य लीला विलास का आनंद प्रदान करने के लिए भगवान 24 अवतार लेते हैं, और उन 24 अवतारों में से प्रमुख अवतार है भगवान राम रघुनाथ, है ना। कृष्ण तो स्वयं भगवान है, लेकिन जब वो अवतार लेते हैं तो उनमें से पूर्ण अवतार प्रमुख अवतार है भगवान राम, है ना। लेकिन हम भगवान को समझ नहीं पाते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान इस संसार के सभी जीवों को जो कि माया के प्रति वशीभूत हो गए हैं, माया में गिर गए हैं, ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही क्या करते हैं, लीला करते हैं। भगवान लीला क्यों करते हैं, हमको प्यूरिफाई करने के लिए, है ना। तो अगर हम प्यूरिफाई होना चाहते हैं, पवित्र होना चाहते हैं, शुद्ध होना चाहते हैं, तो भगवान की क्या सुननी चाहिए, कथा लीलाएं, लीलाएं सुननी चाहिए, है ना। जैसे चैतन्य चरितामृत कहती है कृष्ण बहिर्मुखा हैया भोग वांछा करे निकटस्था माया ताहे झपटिया धरे। कृष्ण बहिर्मुखा हैया भोग वांछा करे निकटस्था माया तारे झपटिया धरे। जैसे ही भगवान कृष्ण की लीलाओं से विमुख होगा तो क्या होगा, निकटस्था माया शक्ति, भगवान की माया शक्ति क्या करेगी, झपट लेगी। इसलिए सदा भगवान की लीलाओं कथाओं का श्रवण ही करते रहना हमारे लिए प्रमुख कार्य है। पता है भगवान राम बड़े पॉपुलर भगवान है, जानते हैं आप, खाली हिंदुस्तान में नहीं, भगवान पूरे वर्ल्ड में पूजनीय है। आप जाएंगे थाईलैंड, बैंकॉक, जमैका, अफ्रीका, वहां पर भी भगवान की कथाओं का श्रवण और लीला उच्चारण किया जाता है। थाईलैंड में तो कहते हैं कि वहां की जो कैपिटल है उसका नाम ही रखा गया अयोध्या, और वहां के जो राजा हैं, जैसे एक स्टेट के राजा होते हैं, उनका नाम है, उनको टाइटल दिया जाता है राजा राम। और वहां पर हर साल दशहरे के दिन भगवान राम का बहुत स्तुति गान होता है। हम लोग तो रावण का पुतला जलाकर सोचते हैं दशहरा हुआ, और रामनवमी आती है तो दुर्गा की पूजा करके सोचते हैं कि रामनवमी आ गई। रामनवमी एक्चुअली भगवान राम का जन्म है। तो ये जो नौ दिन है इसमें दुर्गा स्तुति ना करते हुए क्या करना चाहिए, राम स्तुति करनी चाहिए, राम स्तुति, रामायण का अध्ययन करना चाहिए। तो आज हम जो चर्चा करेंगे कुछ ऐसी लीलाओं पर जो भगवान राम के जीवन में घटी, लेकिन हम उनके बारे में ध्यान ही नहीं दिए। भगवान राम ने कितने वर्ष तक इस संसार में राज किया, बता सकते हैं कोई? 10,000। ओके, और कोई उत्तर? 13,000। और है 13,000। एक जगह वर्णन है 30,000 वर्ष, भागवत कहता है 11,000 वर्ष, रामायण कहती है 13,000 वर्ष। तो इन इतने वर्षों तक भगवान ने राज किया। भगवान तो जो करे वो लीला, लेकिन हम कितनी लीला जानते हैं, खाली 14 वर्ष का वनवास की लीला, है ना। एक राम थे एक रावण ना, उनने उनकी सीता हर ली, उनने रावण को मारन ना, इतनी बात को बातन ना, तुलसी लिख गए पोथन ना। लोग बोलते हैं तुलसीदास ने इतने सारे पोथे लिख दिए, इतनी सी तो बात थी, सीता जी को हरण किया, रावण को मारा, बस यही तो रामायण है। और बहुत ज्ञानी होगा तो लवकुश तक चला जाएगा, बस उसके आगे क्या। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान राम की कुछ ऐसी लीलाएं जो कि आपने शायद पहले ना सुनी हो, सुनी हो तो फिर दोबारा से सुन लेना, क्या हो गया, चार्ज तो लग नहीं रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भगवान राम जब बचपन में थे तो एक बार भगवान रामचंद्र वशिष्ठ ऋषि के साथ में लीला भ्रमण करते हुए अपने राज्य में घूम रहे थे। भगवान राम और लक्ष्मण बहुत ही छोटे थे, जिनकी उम्र थी 6 वर्ष, और अभी वशिष्ठ ऋषि ने उनको धनुष बाण चलाने की लीलाएं सिखाई नहीं है। अभी कौन सी लीला सिखाई है, सिर्फ उनको संस्कृत सिखाई गई है, अभी धनुष बाण चलाने की लीला नहीं सिखाई। तो राम लक्ष्मण ऐसी लीला किए हैं बिल्कुल जैसी हम कृष्ण लीलाओं को सुनते हैं, लेकिन हमने ज्यादा सुना नहीं। अगर आप जाएंगे अयोध्या तो वहां पे राम लला का मंदिर है, राम लला, वो लड्डू गोपाल, जैसे हमारे लड्डू गोपाल कृष्ण हैं, ऐसे ही रामचंद्र भी लड्डू लेकर के हाथ में बैठे हैं, धनुष बाण लेकर के बैठे हैं। तो छोटे छोटे विग्रह हैं भगवान के, तो जानते हैं लोग कि भगवान की बाल लीलाएं बाल कांड में वर्णन करी गई है। तो एक लीला में आता है कि एक बार एक स्त्री अपने सर पर बहुत सारे पानी के मटके, 3 मटके लेकर जा रही थी, और इधर से राम लक्ष्मण खेलने निकल गए, और राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो देखो भाई, स्त्री की नाक में नथुनी, नथुनी कितनी बड़ी थी, इतनी बड़ी, काफी बड़ी नथुनी। क्यों इतनी बड़ी थी, क्योंकि पहले जमाने में माताएं घूंघट लेकर चलती थी, अभी तो घूंघट उड़ गया, घूंघट भी चला गया और उसके अंदर की क्या चली गई, हाँ जी, लज्जा भी चली गई। आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, आप तो माता हैं जो बाहर हैं उनके। तो सही मायने में घूंघट भी गया, लज्जा भी गई, आज के जमाने में साड़ी की जगह पर जीन्स आ गई, भगवान के राम राम की जगह पर हेलो और हाय आ गया, चिट्ठी की जगह पर ईमेल आ गया, फोन की जगह स्मार्टफोन आ गया, बुद्धि की जगह डल बुद्धि आ गई। पहले स्मार्ट बुद्धि होती थी, साकी चीजें डल थी, अभी फोन स्मार्ट हो गए, बुद्धि डल हो गई है। तो ऐसे जगत में हम नहीं जानते इतनी बड़ी नथनी क्यों पहनती थी, क्योंकि बच्चे को अगर बुलाना हो अपनी माँ को, माँ माँ मुझे दूध चाहिए, तो कैसे बुलाएगा, नथनी पकड़ के हिलाता था, और माँ को पता चलता था मेरा बच्चा हिला रहा, तो बोलती थी अच्छा बेटा दूध पिलाती हूँ, है ना, घूंघट होता था पूरा ऐसे कवर्ड लज्जा। तो ये राम लक्ष्मण बोले, देखो देखो भैया कितनी बड़ी नथनी है। तो इनके पास धनुष बाण, धनुष और बाण थे। तो रामचंद्र जी बोले लक्ष्मण से, देख एक खेल दिखाऊं। बोले वशिष्ठ ऋषि को पता ना चल जाए, क्योंकि अभी तक हमने लीलाएं करना आरंभ नहीं किया है, अभी तो शिक्षा ही नहीं ली धनुष बाण चलाने की, तो धनुष कैसे चलाए। तो लक्ष्मण जी बोले, भगवान राम वो तो जानते ना एक दूसरे को कि ये भगवान है, कह रहे दिखाइए ना, दिखाइए ना लीला, दिखाइए। तो रामचंद्र जी ने अपना छोटा सा धनुष बाण उठा के तीर मारा, वो सीधा उस औरत की, स्त्री की नथुनी के पास गया, और जाकर पता नहीं क्या अग्नि उत्पन्न करी कि वो नथुनी पूरी इतनी छोटी हुई, इतनी छोटी, इतनी छोटी हुई कि एकदम नाक चिपक गई ऐसे। अब वो कह रही आ, आ, सांस आना बंद हो गया। तो फिर रामचंद्र जी ने कहा, एक और तीर मार के ये देखो, फिर दोबारा से नथनी, फिर बड़ी साइज हो गया। लक्ष्मण बोले वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, भगवान आप तो कमाल है। बोले कमाल वमाल ठीक है, बच गए, अगर ये जोर जोर से शोर मचाती और वशिष्ठ ऋषि अपना मुंह पलट कर देख लेते तो हम फंस जाते कि हम लीलाएं पहले ही करने लग गए हैं, लेकिन हम तो स्थापित करने के लिए आए हैं कि जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है। अब पहले लीला कर रहे हैं, गुरु ने अभी सिखाया नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु धारण कर रहे हैं दिखाने के लिए कि भगवान के रास्ते को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता, गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो लक्ष्मण बोले, भगवान आपने तो कर ली मेरी लीला, मैं भी तो करूंगा। बोले अच्छा, बोले उस औरत को जाकर, औरत बोली क्या किया आपने। तो रामचंद्र जी, लक्ष्मण हंसते बोले माई कुछ नहीं कुछ नहीं, आपकी नथनी को छोटा किया बड़ा किया, उसमें आपकी तो बस निकल ली थी, सांस बंद हो गई थी। तो औरत बोली ऐसे थोड़ी होता है, धनुष बाण से कोई बड़ा छोटा थोड़ी हो सकता है। तो लक्ष्मण बोले ये देखो, उन्होंने फिर उठाया, लक्ष्मण जी ने तीर चलाया, इस बार नथनी निकलकर हवा में उड़ने लगी, हवा में उड़ रही है उड़ रही है उड़ रही है उड़ रही है, और औरत चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ मेरी नथनी, सोने की नथनी। तो रामचंद्र जी बोले लक्ष्मण जल्दी करो वरना वशिष्ठ ऋषि पलट कर देख लेंगे। तो फिर लक्ष्मण जी ने एक और तीर चलाया और नथुनी वापस उसी स्थान पर आ गई। औरत बोली भैया ये सब छेड़खानी मत करो आप, आपके गुरुजी से कह दूंगी। कहा नहीं नहीं भैया, आपको हम दंडवत प्रणाम करते हैं लेकिन हमारे गुरु से मत कहना। तो इस तरह से भगवान ने बचपन में ही, अभी सीखा भी नहीं है धनुष कैसे चलाते हैं, अब वशिष्ठ जी सिखा रहे हैं, तीर कमान उठाओ,
तो उठा रहे तीर, धनुष उठा रहे, गुरु जी तीर तो चलता ही नहीं, गिर जाता है गुरु जी। गुरु जी कहते नहीं नहीं, बड़े हो गए तो सीख जाओगे, और पहले ही लीला करके आ चुके हैं। ये कोई कर सकता है तो वो कौन है? भगवान। भगवान पैदा होते ही भगवान होता है, पैदा होने से पहले भगवान होता है, इस संसार से वापस वैकुंठ गमन करने के बाद भी भगवान ही होता है। ऐसा नहीं होता रात को सो रहे थे सुबह उठे, यार भगवान का धंधा बढ़िया है, मैं भी भगवान बन जाता हूँ, है ना। लोग भगवान को इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, सारा मेरे पास आ जाएगा, सारे धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ बच्चा, तुम्हें भगवत धाम का दर्शन कराऊंगा, मैं मोक्ष दिलाऊंगा। तो ऐसे भगवान जेल के अंदर चले जाते हैं कुछ समय बाद। तो ऐसे भगवानों के चक्कर में ना आए, हमें उन्हीं भगवान को मानना चाहिए जो युग पर्यंत कई युगों युगों से भगवान है। भगवान राम हर त्रेता युग में रामायण करते हैं, वही भगवान राम सेम लीलाएं करते हैं पर अलग अलग तरीके से। तो भगवान के एक भक्त हुए जिनका नाम है एकनाथ। क्या नाम है? एकनाथ, जिनके एक ही नाथ है। कौन? रघुनाथ। एक ही नाथ रघुनाथ। हमारे कितने नाथ है? बहुत सारे नाथ। मकान का मालिक हमारा नाथ है, ऑफिस का बॉस सैलरी देता है वो नाथ है, मंदिर वाले नाथ हैं, गुरुजी भी नाथ हैं, है ना। इसलिए हमारे हमारा नाम होना चाहिए मल्टीनाथ। क्या होना चाहिए? मल्टीनाथ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के मल्टीनाथ। लेकिन उनका नाम है एकनाथ, सिर्फ एकनाथ है मेरे रघुनाथ। और ऐसे एकनाथ महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए और उन्होंने एक रामायण लिखी। हम जानते हैं रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। हम जानते हैं रामायण किसने लिखी? रामचरितमानस तुलसीदास। बस दो ही रामायण को जानते हैं। हनुमान जी ने भी रामायण लिखी। हनुमान जी ने पत्थरों पर रामायण लिखी जिससे समुद्र बनाए गए, उस पर रामायण लिखी। और वो बाद में हनुमान जी ने कहा कि रामायण पढ़ेंगे और हनुमान का गुणगान करेंगे तो लोग समझेंगे हनुमान बड़े ज्ञानी हैं, तो इस अहंकार से मैं ना भर जाऊं, उठाकर समुद्र में फेंक दिया सारा सारी रामायण। तो कुछ भक्तों ने अभी समुद्र के अंदर जाकर के कुछ पत्थर निकाले और उसमें रामायण के कुछ ऐसी कहानियां निकली जो कि अनसुनी कहानियां हैं। तो ये रामायण हनुमान के द्वारा लिखी। एक रामायण है कंब रामायण जो कि दक्षिण भारत में भक्तों के द्वारा रची गई। तो कई लोग बोलते हैं कि अरे भक्तों के द्वारा लिखी गई रामायण ओरिजिनल रामायण नहीं, ओरिजिनल रामायण तो वही रामायण है जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी। सच बात भी वही है क्योंकि उन्होंने उनके जन्म से पूर्व लिखी, परंतु ऐसा भी नहीं कह सकते कि संत के मन में कुछ चीज उत्पन्न हुई और उन्होंने भगवान की वाणी लिखी तो वो गलत है। ऐसी एकनाथ जी ने एक रामायण लिखी भगवान की। कहा इसको ऑथेंटिक सही है या गलत है, इसका प्रमाण कौन प्रदान करेगा? तो सही गलत का प्रमाण कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? भगवान, स्वयं भगवान। उन्होंने ठाकुर जी से कहा, हे ठाकुर जी आपके लिए रामायण लिखिए, इसका प्रमाण करिए सही है या गलत है। तो ठाकुर जी बोले, रुक जाओ, विग्रह में खड़ा रहता हूं, बैठ के सुनूंगा। विग्रह में क्या रहता हूं? खड़ा रहता हूं, तो बैठकर सुनूंगा। भगवान विग्रह से बाहर आए और साक्षात रूप में राम लक्ष्मण जानकी हनुमान प्रकट होकर के कथा सुनना प्रारंभ किया। अभी एकनाथ जी कथा सुना रहे हैं और बाल कांड से प्रारंभ होते 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 सुंदर कांड तक भगवान राम और सीता और लक्ष्मण सुन रहे हैं, हनुमान भी सुन रहे हैं। सुंदर कांड में भगवान के भक्त हनुमान का वर्णन है, भगवान के भक्त का। हनुमान भगवान नहीं है, भगवान के भक्त का वर्णन है। कभी हनुमान जी ने सीता जी और राम जी के इधर गले में हाथ डाल के निकाह, एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए भगवान, थोड़ा सा ग्रुप फोटो। वो अपने दास की जो भावना है उसको हमेशा बरकरार रखते हैं कि मैं तो भगवान के चरणों में ही रहने वाला हूं, कभी खड़ा नहीं होऊंगा, है ना। इक्वल हम लोग तो मंदिर में आते हैं, माला चढ़ाते हैं, तुरंत पलटते हैं और कहते हैं एक रुक्मणी द्वारकाधीश के साथ एक फोटो हो जाए, क्लिक, ग्रुप में फेसबुक में अपलोड करना है। और फिर यहाँ पर भक्तों को लिखना पड़ता है, कृपया कर भगवान के साथ फोटो ना खिंचाएं। एक्चुअली ये गलत है, क्यों ना खिंचाएं, है ना। इसलिए ना खिंचाएं क्योंकि हम भगवान के समान कभी हो ही नहीं सकते। खड़े होकर फोटो तो उसके साथ खिंचाया जाता है जिसके साथ समानता का व्यवहार हो, हम तो उनके चरणों में लेटने योग्य भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को भगवान के साथ कोई फोटो नहीं खिंचाना चाहिए। तो ऐसे भगवान हनुमान कथा सुन रहे थे और कथा सुनाते सुनाते एकनाथ जी ने कहा, और हनुमान जब अशोक वाटिका में पहुंचे तो वहां पर जो पुष्प थे वो सारे श्वेत पुष्प थे, है ना। और श्वेत पुष्पों में बैठी अशोक वाटिका में सीता मैया भगवान राम का इंतजार कर रहे थे। ऐसा सुनते ही हनुमान जी से रहा नहीं गया, वो बोले देखो लेक्चर के बीच में बोलना तो अभद्र व्यवहार है, क्वेश्चन आंसर राउंड में बोलना चाहिए, पर मन में अब उत्पीड़ा हो रही है कि ये तो खाली कथा लिख रहे हैं ना, मैं तो कैरेक्टर वो हूँ जिसने रोल प्ले किया है, अभी मैं तो पिक्चर के अंदर ही था, लीला में मैंने देखा कि पुष्प सारे लाल रंग के थे, रक्त वर्ण थे, और ये कह रहे हैं श्वेत वर्ण थे। तो उन्होंने क्वेश्चन हाथ हड़ा दिया, बोले वन क्वेश्चन। तो एकनाथ जी बोले कथा चलने दो। तो भगवान राम बोले हनुमान बोलो। तो एकनाथ जी बोले चाहिए बोलेंगे बोली। तो हनुमान जी बोले देखो भाई आपकी कथा जो है बहुत बढ़िया लग रही है, बिल्कुल स्क्रिप्ट राइटिंग परफेक्ट है, लेकिन इसके अंदर एक चीज मिसिंग है क्या, कि आपने श्वेत वर्ण के पुष्पों को रक्त वर्ण में परिवर्तित किया, इस बात पे मैं एग्री नहीं करता हूं क्योंकि मैं तो साक्षात था। सीता जी बोले कि अब मुझे भी बोलना पड़ेगा। सीता जी बोले कि हनुमान आप तो कुछ पल के लिए आए थे, मैंने तो 10 महीने गुजारे वहां पर, ये कहते हैं श्वेत रंग के थे, ये कहते हैं लाल रंग के थे, लेकिन मैं तो वहीं रही, सारे हरे रंग के पुष्प थे वहां पे, हरियाली छाई हुई थी। तो ये बोलते हैं हरा हरित वर्ण, एक बोलते हैं रक्त वर्ण, एक बोलते हैं श्वेत वर्ण। अब तीनों में कॉम्पिटिशन लग गया, मैं अब इसका डिसीजन कौन देगा। रामचंद्र जी के बारे में बोला जाता है राम सदा सेवक रुचि राखा, राम सदा सेवक रुचि राखा, सेवक की रुचि जो होगी वही करने की। अब कंपटीशन ये हुआ कि कौन सा सेवक परफेक्ट है, क्योंकि सीता भी सेवक है और हनुमान भी सेवक के दासों में दास हनुमान, और एकनाथ तो एकनाथ जिनके भगवान, अब क्या करें। तो तीनों ने भगवान से प्रार्थना करी, क्या प्रार्थना करी, तीनों बोलने लगे नमो ब्राह्मण देवाय रामाय कंठमेधसा उत्तम श्लोके धुर्याय नस्त दंडर्पिता अंग्रये। हे रामचंद्र आप तो क्या हैं, कंठमेधसा, आपकी बुद्धि कैसी है, कुंठा रहित है। भगवान कभी एंजाइटी में नहीं आते, चिंता में नहीं आते, कुंठा रहित है भगवान, इसीलिए उनके जगत का नाम है वैकुंठा, कुंठा रहित जगत। तो उन्होंने कहा देखिए हम सब तो एंजाइटी में आ गए हैं, स्ट्रेस टेंशन हो रहा है, हम सबकी बुद्धि एकदम पलट हो गई है कि सच्चाई क्या है, क्योंकि तीनों भक्त सही बोल रहे हैं और तीनों आपके भक्त हैं, गलत नहीं बोल सकते, सच्चाई क्या है। तो इसका उत्तर तो उत्तम श्लोके धुर्याया, हे भगवान आप तो उत्तम हैं, जिनका श्लोकों से भी उच्चारण करें तो पूर्ण नहीं है, ऐसे उत्तम भगवान क्या करें, आप नस्त दंड अर्पित अंग्राए, आपका क्या किया जाता है, आपका दुनिया के द्वारा जो आपकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और आप उन पर कृपा करते हैं, हे रघुनाथ हे राम क्या करें, इसका उत्तर प्रदान करें। तो तीनों वेट करने लगे हैं क्या बोलेंगे, अभी हो जाएगा फाइनल हु इज द बेस्ट, है ना। लेकिन भक्तों में कंपटीशन होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। तो भगवान राम ने कहा कि देखो अगर मैं उत्तर दूंगा ना तो एक तो खुश होगा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और दो करेंगे डब्बा गोल डब्बा गोल डब्बा गोल, है ना, और मेरी बेइज्जती हो गई ये सोच करके उसका दिल टूट जाएगा। और मैं कौन हूं, राम सदा सेवक रुचि राखा, राम तो सदा सेवक की रुचि देखेंगे और मैं दिल नहीं तोड़ सकता। तो तीनों ने एक एग्रीमेंट किया कि उत्तर कुछ भी हो हम तीनों आपकी बात में एग्री करेंगे। तो भगवान राम बोले दिल तो नहीं टूटेगा, गारंटी लॉक किया जाए, कह रहा लॉक किया जाए, हो गया फाइनल डिसीजन दिया गया। भगवान राम बोले देखिए सच्चाई तो यह है एकनाथ सही है, वहां पर अशोक वाटिका में श्वेत वर्ण के पुष्प थे। अभी तो टेंशन में आ गए, हनुमान जी बोले भगवान बात तो आपकी ठीक है, हम आपकी बात में एग्री भी करते हैं, हमें कोई द्वेष भी नहीं है, लेकिन मैं तो वहां था, मैंने वहां देखा लाल पुष्प थे, भगवान आप तो समुद्र के उस पार बैठ के मुझे भेजे थे ना, आपको कैसे पता कि सफेद फूल थे। तो सीता जी बोली हनुमान तुम फिर वही बात कर रहे हो, मैं तो वहां 10 महीने थी, मुझे पता है वहां हरित वर्ण की। तो भगवान राम बोले देखो न तुम गलत न तुम गलत न तुम गलत। तो उन्होंने कहा सच्चाई ये है कि श्वेत रंग के फूल थे, लेकिन जैसा चश्मा लगा होगा वैसा ही नजर आएगा। हनुमान जब तुमने लंकनी का वध कर प्रवेश किया लंका में और वहां छोटे छोटे रूप लेकर तुम चल रहे थे, तुमने देखा नशा पान शराब पी रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, मांसाहार का सेवन कर रहे हैं और भगवान राम का भजन नहीं कर रहे हैं, ये देखकर एक भक्त को क्या आ जाता है, गुस्सा क्रोध आ जाता है। क्रोध अग्नि में इतना प्रवेश कर गए तुम कि क्रोध अग्नि में तुम्हारी आंखें कैसी हो गई, लाल। और जब अशोक वाटिका में प्रवेश किया और देखा सीता मैया के साथ में राक्षसनियां क्या कर रही हैं, दुर्व्यवहार कर रही हैं, ये देखकर तो आंखों से खून की धारा बहने लगी और श्वेत पुष्प कैसे दिखने लग गए, लाल। तो सीता मैया बोले कि भगवान आपने इनको तो संतुष्ट किया पर मेरा क्या। तो उन्होंने कहा देखो सीता, तुम सदा से ही किसकी प्रिय हो, राम की प्रिय हो। सदा तुम चिंतन करती हो, किसका करती हो, राम। जिस दिन तुमने अशोक वाटिका में प्रवेश किया उस दिन से लेकर अंतिम दिन तक तुम राम का ही उच्चारण करते रहे, क्योंकि तुमने राम का नाम उच्चारण किया। अभिन्नत नाम नामिना मैं, और मेरे नाम में कोई भेद नहीं है, इसके कारण तुम्हें कभी मुझसे जुदाई, कभी मुझसे विरह का अनुभव नहीं हुआ। कथा को सुनते रहे क्योंकि भगवान के दर्शन से अधिक महत्वपूर्ण कथा है भगवान की, बाकी आपको महत्वपूर्णता नहीं समझनी, आपकी इच्छा है। तो बताया गया है कि भगवान जो थे, भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम सदा मेरा स्मरण करती रहे, और स्मरण करने से क्या हुआ, तुम्हें हमेशा मेरे रंग मेरे रूप का ही स्मरण हुआ। और भगवान का रंग कैसा है, रामचंद्र हरित वर्ण है, और हरित वर्ण होने के कारण तुम मुझसे कभी विरही नहीं कर पाए, और इसीलिए तुम्हें श्वेत पुष्प कैसे नजर आ रहे थे, हरित वर्ण नजर आ रहे थे। तो इसलिए भगवान राम जो है वो न तेरी न मेरी, सब लोगों की इच्छा पूर्ण करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान जैसे जैसे आप उनके रूप की इच्छा रखेंगे वैसे वैसे रूप में भगवान आपको दर्शन देते हैं, है ना। इसलिए क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, जैसी जैसी इच्छा होगी वैसे वैसे प्रभु की मूरत दिखती है। तो भगवान अपने भक्त की अभिलाषाओं को पूर्ण अवश्य करते हैं। तो अभी हम जाएंगे, हमने सीता जी के बारे में थोड़ा सा वर्णन करेंगे। एक राजा हुए इश्वाकु वंश में, रामचंद्र जी का जन्म इश्वाकु डायनेस्टी में, इश्वाकु वंश में हुआ। इश्वाकु वंश में एक राजा हुए, वो राजा स्वर्ग के जो इंद्र है उनका एक यज्ञ हो रहा था, और एक राजा जो थे अपने अयोध्या में ही एक यज्ञ कराना चाहते थे, और इनके कुल गुरु थे वशिष्ठ ऋषि। तो ये राजा जो थे इश्वाकु वंश के, इश्वाकु राजा बोले जाते थे, जैसे रघु राजा या इश्वाकु राजा, वंश में आने वाले वंशावली के राजा। इश्वाकु राजा ने कहा कि देखिए वशिष्ठ ऋषि, हमें अपने यहाँ यज्ञ कराना है। तो बोले आपका साइम टाइम तो शाम का है, ऐसे भक्त भी करते हैं, एक प्रोग्राम सुबह एक प्रोग्राम शाम। तो वशिष्ठ ऋषि ने सोचा कि मैं इंद्रलोक का यज्ञ पहले संपूर्ण कराता हूँ, जब तक इनका समय होगा मैं लौट आऊंगा। वो इंद्र का यज्ञ पूर्ण कराने के लिए जब स्वर्ग लोग गए, यहाँ पर यज्ञ कराने के लिए कोई कुल गुरु नहीं था, तो इन्होंने गौतम ऋषि को बुलाया। गौतम ऋषि को बुला करके यज्ञ पूर्ण करा लिया, और यज्ञ पूर्णता प्राप्त कर रहा था वशिष्ठ ऋषि जल्दी जल्दी में दक्षिणा लिए बगैर ही स्वर्ग लोक से वापिस आए। बोले अरे अरे, जिस कुल का मैं गुरु हूं उसकी पूजा कराना मेरा कर्तव्य उठता है, वरना अपराध हो जाएगा। जब नीचे आए देखा राजा के घर से कई ब्राह्मण गायों को लेकर, मतलब ये बता रहे हैं कि उस जमाने में भी गाय दान देना, गाय रक्षा करना, गाय सेवा करना त्रेता युग से चला आ रहा है। गायों को दान लेकर के ब्राह्मण राजा के राज्य से बाहर निकल रहे थे, और निकलते हुए वशिष्ठ ऋषि ने देखा तो उनको क्रोध आया। एक भक्त को क्रोध आना चाहिए, एक भक्त का गुण है कि वो सदा क्रोध अग्नि से अलग है। तो वशिष्ठ ऋषि अगर क्रोध आता है तो क्या होता है, ये जरा सुनिएगा इसके अंदर, है ना। क्रोध आया और इधर देखा गौतम ऋषि पहले से ही यज्ञ आहुति कर चुके हैं। तो वशिष्ठ ऋषि जो थे उनके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई, और उन्होंने कहा कि राजा जो है इसने दुर्व्यवहार किया, अपने कुल गुरु का अपमान किया है, शिक्षा लो लेता है मेरे से, दक्षिणा देता है किसी और को, शिक्षा तो लेता है मुझसे, डोनेशन देता कहीं और। तो उन्होंने कहा कि ठीक है इसको पकड़ता हूं, और राजा को अपराध करने के लिए क्या कहा, गुस्से में आके निर्देही क्या हो जाओ, जैसे हम बोलते हैं ना निर्दयी, और निर्दयी शब्द पता है कहां से आया है, निर्देही, देह के बिना हो जाओ। तुरंत उनकी आत्मा शरीर को त्याग करके बाहर निकल गई। अब राजा जो थे उन्होंने भी क्या किया, गुस्से में आकर कह दिया, अगर मैं निर्देही कुरगुलू तो तुम भी निर्देही। वशिष्ठ ऋषि भी निर्देही हो गए, वशिष्ठ ऋषि का भी देह छूट गया, और अब इनकी जो आत्मा है सच्चिदानंद आत्मा, इसको ले जाकर के कहाँ रखा गया? जितने भी मुनिगण थे, एक कुल परंपरा के ऋषि थे वशिष्ठ ऋषि, सबसे सम्मानित ऋषि, बाकी ऋषि गणों में उद्विग्धता प्रदान प्रकट हो गई, करें तो करें क्या, सबने ले जाकर के ऋषि वर को एक मटके में डाल दिया। इसलिए वशिष्ठ ऋषि का एक नाम हो गया कुंभ मुनि। क्या नाम हुआ? कुंभ मतलब मटका, मटके से प्रकट होने वाले मुनि का नाम पड़ गया कुंभ मुनि। तो जो आजकल देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF सेंटर्स बोलते हैं ना, IVF सेंटर्स, ये टेस्ट ट्यूब बेबी अभी कलयुग का नहीं है, ये त्रेता युग में ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है। ऑलरेडी टेस्ट ट्यूब बेबी वशिष्ठ ऋषि प्रकट हो चुके हैं। तो जो ये जो राजा थे, क्योंकि इन्होंने गायों का दान दिया था, देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात, गाय को दान दिया, ब्राह्मण की सेवा करी, तो क्या हुआ, निर्दयी होते ही उनकी देह तो वहीं रह गई और उनकी आत्मा कहां चली गई? भगवत धाम। इसलिए भगवान कहते हैं नमो ब्राह्मण देवाय, नमो ब्राह्मण दे ब्राह्मण हिताय च, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जो व्यक्ति गाय का और ब्राह्मण का भजन करता है, भगवान कृष्ण उससे बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना। भगवान का नाम क्या है? गोपाल। और लोग भैंस को पाल के सोचते हैं कि हम गाय की सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम भैंस पाल नहीं है, भगवान का नाम क्या है? और दूध भी पीना चाहिए तो किसका पीना चाहिए? क्योंकि भैंस का दूध पीने से हमें भैंस करने लग जाते, भैंस करते हर बात पर, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, बड़ी भैंसबाजी करते हैं। गाय का दूध पीने से हम गुड गाय बन जाते हैं, गुड गाय है, यू आर ए गुड गाय। इसकी प्रमाणिकता भी है शास्त्र की, ये तो मजाक में हमने कहा, लेकिन सच्चाई ये है कि त्रेता युग द्वापर युग में कोई भैंस का दूध नहीं पीता था। महाभारत के प्रसंग में ऐसा वर्णन है कि असुरगण जो होते थे, उनको जब ब्राह्मण को दान दिया जाता था तो गाय दान देते थे, असुर को दान दिया जाता था तो भैंस दान दी जाती थी। वो भैंस बहुत करते थे ना, भगवान ऐसा कैसे होता, अरे भैंस ले जाता और भैंस का दूध पी। तो अभी बहुत बड़ी परेशानी उत्पन्न हो गई है कि भैंस का दूध ही अवेलेबल है, गाय का मिलता ही नहीं, करे क्या। तो हमारे भक्तों ने गौशाला खोली है और वो गायों का दूध प्रदान करते, तो ऐसे भक्तों को नमन करना चाहिए। हे कृष्णा। तो जो ये राजा थे, इनका जो शरीर था, अब सबने कहा राजा नहीं है तो राजा होने चाहिए। भागवत में वर्णन है पृथु महाराज के अंग से ही उनके दूसरे राजाओं को प्रकट किया गया, राजा वेन उनके पुत्र हुए बाद में। तो जो इस प्रकार से बताया गया कि इन राजा के शरीर को भी मथा गया। मथने का तरीका क्या है कि सीधी टांग को काट करके शरीर का मंथन करो तो उससे एक नए शरीर को प्रकट किया जा सकता है। आप लोगों को तो लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पहले सर्जरी बहुत खतरनाक होती थी, आज की सर्जरी कुछ भी नहीं है। और उन्होंने मंथन किया और मंथन करने के कारण वो राजा बन गए मिथि राजा। क्या नाम बन गए? मिथि। मंथन से शब्द उत्पन्न हुआ मिथि राजा। और ये राजा जो दूसरे उत्पन्न हुए इनका नाम पड़ गया, क्योंकि ये उत्पन्न कर हुए, इनका नाम पड़ा जनक। क्या नाम पड़ा? जनक। तो इनका पूरा नाम पड़ गया मिथि जनक। क्या नाम पड़ा? मिथि जनक। और इनकी जो जगह थी, क्योंकि इन्होंने कहा कि देखो यहां पर राजाओं का अपमान हुआ, ब्राह्मणों का अपमान हुआ, इस स्थान को छोड़ देते हैं। अयोध्या को छोड़कर इक्ष्वाकु वंश के लोग दूर चले गए और उस जगह का नाम पड़ा मिथिला, जहां पर सीता जी का जन्म हुआ। तो जनक के वंश में जितने भी लोग प्रकट हुए सभी लोग जनक कहलाए, जनक एक, जनक दो, जनक तीन, जनक चार, जनक पांच। तो एक जनक थे जिनका नाम था राजा देवव्रत जनक, और जिन जनक की हम कथा सुनते हैं, जिन्हें सीता जी जिनके घर में उत्पन्न हुई, वो कई पीढ़ी के बाद में उत्पन्न हुए जनक हैं। तो कभी बोला जाता है जनक ने ऐसा किया, जनक ने वैसा किया, तो पूछ लेना चाहिए कौन से जनक की बात कर रहे हैं, एक दो तीन चार, क्योंकि पूरी पीढ़ी मिथि जनक के नाम से प्रकट हुई और इस जगत का नाम पड़ा मिथिला और उनकी भाषा का नाम भी पड़ा मैथिली। तो ऐसे जो मिथि जनक राजा उत्पन्न हुए, ये राजा जो थे इनके घर में भगवान का एक महेश चाप था, शिव धनुष। कौन से राजा को मिला था? राजा देवव्रत को मिला था। और जनक जो थे, अभी वाले जनक जो हैं, जिनके घर में सीता जी उत्पन्न हुई, इनकी पूर्वजों को, उनका नाम था देवव्रत जनक, उन्हें महेश चाप विष्णु धनुष शिव धनुष प्राप्त हुआ था। तो कैसे प्राप्त हुआ ये हमें पता करना चाहिए। तो बताते हैं कि एक बार नारद मुनि इंद्र के पास पहुंचे स्वर्ग में, और स्वर्ग में जाकर इंद्र से कहते हैं कि कैसा चल रहा है आपका जीवन, तो उसने कहा भजन में रुचि नहीं आ रही है। क्योंकि भजन में रुचि इसलिए नहीं आ रही क्योंकि भगवान की लीलाओं में हमें कोई आनंद का अनुभव नहीं होता है। तो आनंद का अनुभव करने के लिए हम चाहते हैं क्या कि हम भगवान की लीला देखें। अभी आप कैसे करते लीला देखने के लिए, महाभारत सीरियल, बीआर चोपड़ा, रामानंद सागर, थैंक यू बोल के लगा लेते हो, या फिर इस्कॉन द्वारका आ जाते हो और यहाँ कथा सुन लेते हो। लेकिन राजा के स्वर्ग में कौन लीला सुनाएगा? नारद मुनि बोले मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो एक जगह रुक नहीं सकता हूँ, कथा शुरू करूंगा समय आ जाएगा मैं तो निकल जाऊंगा आगे। तो कहा क्या करें, कहा भगवान से क्यों नहीं बोला जाए कि भगवान कुछ लीला करें। तो नारद जी ने कहा कौन सी लीला सुनना चाहते हो? कहा मैं पूछना चाहता हूं शिव बड़े भगवान हैं कि कृष्ण बड़े भगवान है? अरे अरे खतरनाक लीला तुमने पूछना चाहा, ये लीला देखना चाहते हो? कहा ये लीला देखना चाहता हूं। तो बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो तुम जाओ शिव जी के पास और पूछो कि कौन बड़े भगवान, और फिर देखते हैं क्या होता है, और मैं जाता हूं कृष्ण भगवान के पास। तो नारद जी के पिता का नाम है ब्रह्मा, ब्रह्मा के मानस पुत्र है नारद जी। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और बोले पिताजी मेरी बस की बात नहीं है, भगवान से जाकर कहूं कि भगवान जरा कोई लीला दिखाओ, आप बड़े कि शिव जी बड़े। लेकिन आप बोलेंगे क्योंकि आप थोड़े से अबव एज है, थोड़ा उम्र का भी तकाजा है और सृष्टि के पहले जीव भी है, तो आपकी बात हो सकता है मान ले, ठीक है। तो उन्होंने विष्णु भगवान के पास जाकर श्वेत दीप नामक स्थान में क्षीर सागर में जाकर भगवान से प्रार्थना की, कहा भगवान आप बड़े हैं या शिव बड़े हैं? तो भगवान हंसने लगे, भगवान ने कुछ नहीं कहा। और इधर इंद्र पहुंच गए किसके पास, कैलाश पर्वत पर शिव जी बैठे थे और जप कर रहे थे, आंख बंद करके जप चालू था उनका। तो उनको जाकर के कहते हैं ओम नमः शिवाय, बोले शायद इसको सुनकर खोल देंगे आंखें। तो उन्होंने काफी देर बाद अपने जब नेत्र खोले और देखा क्या कि वहां पर इंद्र खड़े, कह रहे अरे स्वर्ग लोक को त्याग कर कैलाश आ गए, क्या हो गया, कैसी इमरजेंसी केस बन गया क्या कोई? बोले नहीं एक्चुअली हम पूछने आए थे आपसे कि शिवजी आप बड़े हैं या कृष्ण बड़े हैं, लोगों में बहुत द्वंद रहता है शिवजी बड़े या कृष्ण। तो शिवजी ने कहा कि देखो मरवाने वाली बात मत करो, मैं अभी किसका जप कर रहा था, राम का जप कर रहा था, और अब आप जाकर के राम से पूछो कि तुम बड़े कि मैं बड़े, मरवाओगे मुझे, कभी मत बोलना आगे से, अपने जाओ स्वर्ग संभालो, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, अपना काम करो। तो बोले नहीं नहीं भगवान ऐसे कैसे चला जाऊं, एक लीला हो जाए, थोड़ी लड़ाई करके दिखा दो युद्ध में शक्तिशाली कौन, ताकि कलयुग में जो जीव प्रश्न पूछेंगे उनको उत्तर देने में आसानी होगी। भगवान बोले तुम कलयुग का नहीं सोच रहे, तुम अपना सोच रहे, तुम्हें अपने आनंद की अनुभूति करनी, लीला कौन ये मारा वो मारा है ना, वो देखना चाहते हैं। ठीक है चलो भाई तुम्हारी इच्छा है तो लड़ेंगे, लेकिन देखो विष्णु भगवान से लड़ने के लिए उनको बोला वो अपना धनुष ना प्रयोग करें, वो कौन सा धनुष प्रयोग करें जो एक ही जगह से बना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, विश्वकर्मा जी को बुलाया गया और कहा दो धनुष बनाओ, एक शिव जी को दो एक विष्णु जी को दो, दोनों लड़ेंगे। और शिव जी पूरी एकदम कसरत करके और पुशअप्स मार के और दंड पेल कर और पूरे एकदम भावभली बनकर और धनुष उठाकर जिसको कहा जाता है महेश चाप उठाकर चले, और जैसे ही सामने देखा सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु विष्णुकर्मा के हाथ से धनुष लेकर प्रकट हुए, इतना सूर्य का तेज निकला शिव जी देखते ही हैरान रह गए और क्या बोले, मेरे प्रभु राम प्रकट हो गए, और दंडवत प्रणाम कर दिए। सारे देवता बोले अरे दंडवत कराने के लिए थोड़ी बुलाया था बाबा, लड़ाई करानी थी, आप दोनों में देखना था कौन शक्तिशाली है। तो बोले अच्छा ये देखना चाहते थे शक्तिशाली कौन है। शिव जी बोले देखो भैया वो मैंने वैसे भूल दिया मोह माया के चक्कर में, लेकिन देखो सच्चाई ये है इनके सामने मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूं, मैं तो इनका बहुत पुराना दास हूं, भागवत में वर्णन है वैष्णव नाम यथाम शंभु, वैष्णवों में मैं महान हूं लेकिन मैं भगवान नहीं हूं। इंद्र बोले भगवान ये क्या, आपने तो बेइज्जती करा दी, युद्ध शुरू होने से पहले खत्म कर दिया, कम से कम खड़े तो एकाध तीर तो चलाओ, भगवान से रिक्वेस्ट कर लेंगे दो तीन फॉल्स चलवा देंगे लेकिन लड़ाई तो करो। शिव जी बोले मरवाओगे तुम, और धनुष लेकर के बोले ठीक है बुलाओ विष्णु जी को, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, एक दो तीन। शिव जी ने मुंह मोड़ा और भागना शुरू। विष्णु जी बोले अरे रुको रुको शिव मैं मारूंगा नहीं, आओ आओ युद्ध तो करो। शिव जी बोले सारे देवताओं से तुम्हें पड़ गई तसल्ली, हो गया कंपटीशन, आज मेरे भगवान मुझसे क्रोध में आ गए, मुझे मारना चाहते हैं। तो सारे देवता बोले, नहीं, भगवान कभी किसी से क्रोध में नहीं होते, और आपसे, आप तो इतने महान भक्त हैं भगवान के, आपसे कभी क्रोध नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। तो शिव जी वहां खड़े हुए, उन्होंने कहा कि देखो भाई लड़ाई कैंसिल कराओ तो मैं बीच में आऊंगा वरना नहीं। तो सारे देवता बोले लड़ाई कैंसिल। विष्णु भगवान हम समझ गए कौन महान कौन नहीं महान, आप भी समझ गए होंगे कौन महान कौन नहीं महान। शिव जी बोले लड़ाई कैंसिल तो मैं भगवान की तरफ मुख करता हूं। भगवान की तरफ मुख हुआ, शिव जी ने फिर से भगवान विष्णु को प्रणाम किया और विष्णु भगवान बोले ठीक है शिव, जाओ तुम कैलाश पर अपनी सेवाएं जारी रखो। वो बोले लेकिन ये जो दो धनुष हैं ये दोनों धनुष बड़े शक्तिशाली हैं, एक शिव जी के हाथ में था और एक विष्णु के हाथ में था। विष्णु के हाथ में जो धनुष था वो ज्यादा शक्तिशाली था, क्यों? क्योंकि भगवान के साथ में सूक्ष्म रूप में उनके धनुष सारंग चलते हैं। भगवान के धनुष का नाम क्या है? सारंग। भगवान के शंख का क्या नाम है? पंचजन्य। पंचजन्य कृष्ण उठाए, राम उठाए, विष्णु उठाए, जब भी उठाएंगे क्या उठाएंगे? पंचजन्य है। और ऐसे ही भगवान जब धनुष उठाएंगे तो कौन सा उठाएंगे? सारंग, है ना। और भगवान राम उठाते हैं उस धनुष का नाम पड़ जाता है कोदंड। कोदंड किसको दंड देना है भगवान उसी धनुष से देते हैं। तो ये सारंग धनुष जो विष्णु का था वो क्या किया, सूक्ष्म रूप में विश्वकर्मा के धनुष में प्रवेश कर गया, तो वो ज्यादा शक्तिशाली बन गया। अब तो शिव जी को भी नहीं दे सकते कि ये लो, और शिव जी उठाएंगे कैसे सारंग धनुष, तो विष्णु ही उठा सकते हैं। तो उन्होंने कहा क्या किया कि उन्होंने उस धनुष को प्रदान कर दिया, एक ऋषि थे उन ऋषि को उन्होंने प्रदान किया, और ऋषि ने ले जाकर के उस को दिया, जमदग्नि नाम के एक महान संत हुए उनको दिया, ऋचिका नाम के ऋषि थे, ऋचिका ऋषि ने जमदग्नि को दिया, और जमदग्नि ने बाद में अपने पुत्र परशुराम को दिया। जो परशुराम जी उठाते हैं वो धनुष किसका है? जो महेश और विष्णु के युद्ध से प्राप्त हुआ। और जो शिवजी का धनुष था इन्होंने एक राजा थे देवव्रत जनक उनको प्रदान किया, बोले ये तुम रखो। अब देवव्रत जनक बोले आपने तो दे दिया, हम इसको महल तक कैसे ले जाएंगे? महल तक ले जाने के लिए 300 लोगों को लगाया गया, और 300 लोग भी कोई इस्कॉन द्वारका में प्रसाद खा के सोने वाले लोग नहीं थे, ये बड़े शक्तिशाली वीर थे जो रात दिन मल युद्ध की तैयारी करते थे। एक सोने का रथ बनाया गया बड़े बड़े पहियों वाला, और इसको 300 लोग मिलकर जब धक्का देते थे तब ये आधा इंच हिलता था, उसके बाद सारे लोग आधा घंटा आराम करते थे, फिर आकर धक्का देते थे तो कितना बढ़ता था? आधा इंच। ऐसे आधा इंच करके देवव्रत महाराज युद्ध स्थान से अपने जनक महल तक लेके गए, और इस धनुष को उन्होंने लाकर एक बड़े से कांच में रखवा दिया, और रोज उसकी क्या होती थी? पूजा होती थी। पूजा होते 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 जनक की परंपरा से परंपरा आते आते एक जनक राजा आए जिनके घर में कोई पुत्र पुत्री नहीं हुआ। तो राजा जनक ने कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं हल जोतूंगा, और हल जोतने से क्या होगा कि जहां पर भी मेरा हल रुकेगा उसी हल रुकने की जगह पर मैं सोना गाय चांदी दान दूंगा। तो उनका हल जहां जहां रुकता था वहां वहां वो दान देते थे। एक जगह हल रुका तो उसमें से एक बहुत बड़ा कलश निकला सोने का, स्वर्ण कलश, और स्वर्ण कुंभ के अंदर से एक 6 वर्ष की पुत्री उत्पन्न हुई, छोटी नहीं, कितनी बड़ी, दिव्य। तो उन्होंने कहा ये तो हमारी कौन है, जनक की पुत्री क्या बन गई? जानकी। सीता मैया का प्रकट हुई। बोलो सीता महारानी की, सीता मैया प्रकट हुई। अब उन्होंने कहा सीता तो आ गई है, अब ये सीता धीरे धीरे जब बड़े होने लगी, अभी 6 वर्ष की तो पुत्री उत्पन्न हुई है, अब ये जो सीता मैया है देखने में 6 वर्ष की लगती है लेकिन वो तो दिव्य है। सीता मैया की सहेलियां सारी मिलकर एक दिन भगवान की अर्चना के लिए फूल चुनने गई थी, फूल, और ऊंचे ऊंचे वृक्ष के फूल वो तोड़ नहीं पाती थी। तो आकर सीता जी को कहा सीता जी फूल ऊपर वाले टूट नहीं रहे, क्या करें? सीता मैया बोले कोई डंडा ले आओ, मैं डंडे से तोड़ दूंगी। डंडा ढूंढा, किसी ऋषि का डंडा नहीं मिला, किसी साधु का डंडा नहीं मिला, मास्टर जी का डंडा नहीं, गुरु जी का डंडा नहीं। सीता मैया ने क्या किया, महेश चाप रखा था उसको ऐसे एक साइड से उठाया और ऐसे करके फूल तोड़ दिए। जब फूल तोड़ दिए तो सारे सैनिकों ने देखा, हाँ सीता जी 300 लोग मिलकर आधा इंच धक्का देकर रथ पर लेके आते थे मल योद्धा, ये 6 वर्ष की छोटी सी पुत्री जनक महाराज की ने एक हाथ से ऐसे करके फूल तोड़ दिए, कितनी शक्तिशाली कौन है? आकर जनक जी को बताया, जनक जी आपकी पुत्री ने महेश चाप उठा रखा है। पागल, ऐसा भी कभी हो सकता है? महेश चाप है वो पुत्री उठाएगी? स्त्री के तो बस की बात ही नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं उठा सकते। तो उन्होंने कहा, महाराज हम सच बोल रहे हैं, तुम जाओ अपना काम करो। दूसरे ने आकर कहा, बोले महाराज जनक आपकी पुत्री जानकी ने आपका महेश चाप उठा लिया। कहा, देखो इस तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, 1000 नींबू मंगाए जाए, नींबू का रस निकाल कर इसके मस्तिष्क पर रखा जाए ताकि मस्तिष्क गर्म से ठंडा हो जाए, बहुत गर्मी लग रही है इसको। भगा दिया उसको। लोग बोले सारे मिलकर जाएंगे, सारे मिलकर गए तो राजा जनक बोले चलो चलो मैं भी चलता हूं देखता हूं। जब राजा जनक ने जाकर देखा तो क्या देखा, जानकी जी ने महेश चाप को उठा रखा। कहा, बेटी ये तुमने हाथ में जो उठा रखा है कहां से उठाया? कहा, वो पिताजी जहां आप रोज वंदना करते थे ना, भगवान शिव का धनुष, कोई लकड़ी नहीं मिली फूल तोड़ने के लिए तो मैंने एक साइड से उठा लिया। तो बोले इसे अभी रखो, इसे अभी रखो। कहा, ठीक है पिताजी आप नाराज होते हैं। उन्होंने नीचे रख दिया। नीचे रखा तो उन्होंने याद जितने भी सैनिक थे उनसे कहा, उठाओ इसे वापिस रखो। सारे बोले हम, बोले हाँ, सबने सारी जान निकल गई। तो राजा जनक बोले हाँ मैं समझ गया, 300 मलयोद्धाओं को बुलाया जाए, 300 मलयोद्धा आए, फिर कार्ट पे चढ़ाया गया रथ के ऊपर, फिर धक्का दिया आधा इंच करके गार्डन बाग से लेकर के जनक महल तक वापस महेश चाप को पहुंचाया गया। तो अब राजा जनक समझ गए थे कि अगर सीता का विवाह करना है तो किससे करना पड़ेगा, हाँ जी ऐसे व्यक्ति से जो धनुष उठा सकता है, किसी साधारण पुरुष की स्थिति नहीं है, क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है। और फिर आप सभी जानते हैं भगवान राम ने क्या किया, उस धनुष को उठाया नहीं, उस धनुष को दो टुकड़े भी किया, क्योंकि वो स्वयं विष्णु थे, वो जानते थे ये महेश चाप है जो कि शिव जी लेकर भाग गए थे और बाद में देवव्रत जनक को प्रदान किया। तो ये है सीता लीला, आपने सुनी राम लीला सीता लीला, आप अंतिम लीला सुनते हैं, समय हो चुका है रावण की लीला, ताकि हमारी रामायण के तीनों कैरेक्टर्स तीनों चरित्र पूर्ण हो। कहते हैं जो रावण थे वो कैसे थे, कामम प्राहि जाहि विशर्वसा आवमेहम त्रिलोक्य रावणम आवपनोहि वीरापालिनम। त्रिलोक रावणम आवपनोहि वीरापालिनम। बताया गया है तीनों लोकों में जो शक्तिशाली था वो कौन था, कहता था नहीं थे तो भगवान राम। इसलिए कहता था क्योंकि कामम प्राही, काम के वश में उसको लगता था मैं तीनों लोकों का राजा हूं। विशर्वसः विश्वर ऋषि के, विशर्वा ऋषि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। संस्कृत का उच्चारण बड़ा अच्छा करता था, धगत धगत ज्वाल पालिका। रावण ने एक स्रोत की उत्पन्ना भी करी, शिव तांडव स्रोत, बड़ा शक्तिशाली, आज भी लोग गाते हैं। लेकिन संस्कृत का उच्चारण करने वाला जरूरी नहीं है कि भगवान का महान भक्त हो। भगवान का भक्त बनने के लिए क्या चाहिए, भक्ति चाहिए। निरंतर नाम जप में जिसकी रुचि हो वो भक्त है, संस्कृत उच्चारण करने वाला भगवान का नहीं। राम का जप इतना करो इतना करो इतना करो इतना करो कि हर चीज में हरा रंग दिखने लग जाए। कृष्ण का जप इतना करो इतना जप करो इतना जप करो, हर चीज में श्याम वर्ण दिखने लग जाए। गोपियों को जब भंवरे दिखते थे तो लगता था कृष्ण आ गए। ऐसा जिस दिन हो जाए स्थिति उस दिन मानेंगे हमारा जप सही चल रहा है। लेकिन अभी तो जप में भी जप नहीं दिखता, जप के समय भी दुनियादारी दिखती है, तो फिर अभी हमारा जप बहुत ही कोमल स्तर पे है। इसको परिपक्व करने का तरीका क्या है, ध्यान पूर्वक हृदय से अपने दोनों हाथों को भगवान के वैकुंठ धाम की तरफ करते हुए बोलना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो रावण क्यों त्रिलोकी का राजा मानने लगा, क्योंकि वो काम के बस में था। तो तीन द्वार बताए गए हैं नरक के, कौन कौन से हैं, काम क्रोध लोभ। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम काम क्रोधस लोभश्च, ये तीन नरक के द्वार। काम के वशीभूत इतना था रावण के बारे में, आपने सुना सीता का अपहरण किया, इतना कामी व्यक्ति था, इतना लस्टफुल था, इतना लस्टी था कि घर में यज्ञ किया, यज्ञ करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया और यज्ञ चल रहा है। यज्ञ अग्नि से अग्निदेव प्रकट होने वाले थे। अग्निदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी रावण के मंत्र उच्चारण इतने अच्छे हैं, मैं उसको प्रसन्न हो गया हूं और अब मैं कृपा करने के लिए यज्ञ मंडप से प्रकट होऊंगा अग्नि के रूप में। तो ब्रह्मा जी बोले, मत जाओ, फंस जाओगे। बोला क्यों? तो अग्निदेव को ब्रह्मा जी बोले कि अगर जाओगे तो अपनी पत्नी के साथ जाओगे। तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? क्या अग्निदेव की पत्नी का नाम? स्वाहा। इसीलिए हर मंत्र में बोलते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। कहा इसको लेके मत जाओ, रावण किसी भी सुंदर स्त्री को देखता है उसे पकड़ लेता है, इसलिए उससे दूर रहो। कहा नहीं, उसने यज्ञ आहुति दी है तो मैं आहुति का प्रमाण देने के लिए प्रकट होऊंगा और अपनी पत्नी के साथ नहीं होऊंगा तो पूर्ण रूपेण उसको कृपा नहीं कर पाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा, मेरा फर्ज था समझाना। रावण बोल रहा है स्वाहा स्वाहा स्वाहा। स्वाहा प्रकट हो गई, अग्निदेव प्रकट हो गए। ये बोल रहा है स्वाहा 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 स्वाहा। लेकर भाग जाता हूं, मन में उसके आया। तो ऋषिवर बोले तुम्हें जो करना हो करना, पूर्ण आहुति तो हो जान दो। कहा पूर्ण आहुति तुम करो, स्वाहा लेकर के भाग गया। अग्निदेव कह रहे मेरी पत्नी, कह रहे अब तो मेरी हो गई, लेके भाग गया रावण। इतना मतलब जिसकी पूजा कर रहा है उसी को लेकर के छीनना चाहता है, ये असुर प्रवृत्ति रावण के अंदर थी। तो स्वाहा ने श्रापित किया, स्वाहा ने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। अग्निदेव ने कहा हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुमने अग्नि कुंड से उठाया है ना, एक दिन तुम्हारी लंका भी इसी अग्नि कुंड की तरह भस्म हो जाएगी। ये किसने श्राप दिया? अग्निदेव और स्वाहा, उनकी धर्म पत्नी। तो रावण के पास 10 सर, लोग जानते 10 सर थे। ब्रह्मा जी के वरदान से उसे 10 सर प्राप्त हुए। 10 सर थे, 10ों के 10 ऐसे नहीं थे कि 10 सर लेके चलता था ऐसे। कई दिन एक व्यक्ति पूछ रहा था, प्रभु जी 10 सर रावण लेके चलता था, सिर में दर्द होता था तो पता कैसे चलता था अमृतांजन कौन से सिर में लगाना है? अच्छा एक पूछ रहा था, बोले प्रभु जी अगर वो करवट बदलता था तो कौन सा सर पहले दबता होगा उसका? मैंने उसको कहा उसने डबल बेड के अंदर एक ऐसे एक हिस्सा बनाया था, जब इधर बढ़ता था ऐसे घूम जाता था पूरा। ऐसे ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं रावण के बारे में। तो वो बोलते थे कि हमें एक सर से इतनी टेंशन होती है, उसको 10 सर से कितनी टेंशन होती होगी, 10 मल्टीप्लाइड टेंशन। ऐसा नहीं था, उसके 10ों के 10 सर अलग अलग थे। उसको वरदान था एक सर कटेगा तो दूसरा सर आएगा, और सारे के सारे सर अपने आप में ज्ञानी थे। उसके पास में ऐसे सर थे जो कि एक जानता था कि जादू कैसे किया जाए, एक जानता था भ्रम कैसे उत्पन्न किया जाए, एक जानता था पॉलिटिक्स कैसे की जाए, एक जानता था युद्ध कैसे किया जाए, एक जानता था कि राज्य कैसे किया जाए, एक जानता था मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो ये हर सर अलग अलग योग्यता का था। तो जब ये सीता जी का अपहरण करना चाहता था तो इसको 9 सरों ने मना किया। नो, बिल्कुल भी नहीं, इसके 9 सरों ने मना किया, वो सब ज्ञानी सर थे। लेकिन इसने कहा अपने सर की सुनी। ऐसे ही हमारे भी जीवन में गुरु आदि होते हैं, हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु हमें कहते हैं ये काम मत करो, लेकिन हम किसकी सुनते हैं? अपने सर की। और इसीलिए सर्वनाश होता है, सर की सुनने से सर्वनाश हो जाता है व्यक्ति का। और उसका रावण का क्या हुआ? सर्वनाश हुआ, है ना। यहां तक कि रावण ने एक बार नारद मुनि को जाते देखा, रोक लिया, बोला ओ नारद, हरि बोल। बोले हाँ गुरुजी, हो आप तो गुरुजी। मतलब देखो ना, गुरु के साथ भी कैसा ट्रीटमेंट, त्रेता युग की बात कर रहे हैं। आजकल तो लोग कलयुग में गुरुजी के कंधे पे हाथ रख के घूमते हैं, और गुरुजी सब ठीक ठाक, वो तरीका ठीक नहीं है। गुरु का सम्मान सदा गुरु के समान ही होना चाहिए, जैसा भगवान राम स्थापित कर रहे हैं अपनी मर्यादाओं से। गुरु को देखते ही दंडवत प्रणाम करना, गुरु से जिज्ञासा करे तो कौन से जिज्ञासा करे, मेरी भक्ति में प्रगति कैसे होगी। तो इन्होंने नारद जी को कहा, नारद जी आप तो गुरुवर हैं, आपने ध्रुव बनाए, प्रहलाद बनाए, एक हमको भी बना दीजिए। तो नारद जी बोले नारायण नारायण, तुमको कौन बनाएगा, तुमको तो तुम्हारे 10 सर ही बनाते रहते हैं, बेवकूफ बनाते तुमको, तुमको कौन बनाएगा, बने बनाएगा कौन बनाएगा। तो रावण बोला वो बात तो ठीक है, लेकिन एक ओम शब्द का अर्थ समझना चाहता हूं, ये ओम नमः शिवाय में, नमः तो प्रणाम, शिवा मेरे शिव, लेकिन ओम का क्या मतलब है? नारद जी बोले, तेरे बस की बात नहीं समझना, तेरी असुर बुद्धि में ओम समझ नहीं आएगा। तू तो कहता रहे एक ओमकार, तू बोलता रहे, तेरी ओम समझ नहीं आएगा कभी भी। कहा, लेकिन इस ओम का अर्थ क्या है? नारद जी बोले, देखो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मंत्रों में मैं ओम हूं, अगर मैं ओम बोलता हूं तो मतलब मैं कृष्ण बोलता हूं, है ना। तो ऐसे सिख धर्म के लोग बोलते हैं एक ओमकार, और किसका पूजन बोलते हैं? एक भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा अहम प्रणव अस्मि, मैं प्रणव हूं, ओमकार हूं। तो भगवान कृष्ण का ही भजन करते हैं लेकिन मानते नहीं। तो रावण को बोले, तू समझने वाला नहीं इसलिए हम तुझे समझाएंगे नहीं। रावण के पास एक तलवार थी, श्री रुक्मणी द्वारकाधीश जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताय की जय। रावण के पास एक तलवार थी जिसका नाम था चंद्रहास। चंद्रहास तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि खाली गर्दन नहीं काटती थी, अग्नि भी उत्पन्न करती थी। और अगर आपने भ्रम बना दिया है 10 लोगों का, इसको मारूं, इसको मारूं, किसको मारूं, तो ये तलवार चुन करके ढूंढ करके उसी व्यक्ति को मारेगी जिसने गलत किया है। तो रावण ने चंद्रहास तलवार किसके ऊपर चला दी? गुरुजी के ऊपर। नारद जी को क्या बोला था? आजकल लोग ऐसे भी कलयुग में गुरुजी भी बोलते हैं, बाद में गुरुजी के ऊपर कटाक्ष भी चलाते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो जो गुरुजी के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं उनकी प्रवृत्ति असुर प्रवृत्ति है, रावण अपनी इससे बता रहा है शिक्षा से। तो चंद्रहास तलवार जब चलाई तो नारद जी के पास वो तलवार आई, और नारायण जी ने क्या कहा? नारायण कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद। और चंद्रहास तलवार क्या हुई? वापिस चली गई। अब तो बड़ा टेंशन में रावण बोला, अरे ये काम नहीं किया, शिव जी का धनुष काम नहीं आया, शिव जी का तलवार काम नहीं आया, शिव जी का त्रिशूल चलाता हूं। उसने त्रिदंड चला दिया। ये जो त्रिशूल इसने चलाया, ये त्रिशूल भी गया। नारद जी ने कहा, नारायण गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो भी चला गया। अब रावण घबरा गया, बोला आप किस चीज के बने हुए हैं, कोई असर नहीं होता। तो उन्होंने कहा, मैं आध्यात्मिक शरीर का बना हुआ। किस चीज का बना हूं? जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान राम का नाम जप करेगा, कृष्ण का नाम जप करेगा, वो अपना शरीर भौतिक छोड़ने के बाद कौन सा शरीर प्राप्त करेगा? आध्यात्मिक शरीर, दिव्य शरीर प्राप्त करेगा, जिसमें न जन्म है, न मृत्यु है, न बीमारी है, न बुढ़ापा है। ऐसा शरीर नारद जी के पास है, और उस शरीर से वो रात दिन भगवान का नाम जपते रहते। नारद जी से उसने कहा, लेकिन मुझे कैसे मिलेगा? कहा, तू भूल जा, तेरे कर्म ऐसे हैं कि तुझे कभी भी नहीं मिलेगा। और फिर नारद जी ने उसको श्राप दिया कि तुमने जैसा मेरे साथ किया है, अब देखना तुम्हारे जीवन में एक बंदर आएगा, वानर, और वानर क्या करेगा? तुम्हारे मुंह पर थूकेगा, और जिस दिन एक वानर तुम्हारे मुंह पर थूकेगा उसके 10 दिन बाद तुम मर जाओगे। और ऐसा ही हुआ। हनुमान जी जब रामचंद्र जी को संदेश लेकर पहुंचे तो इन्होंने क्या किया? थूक दिया रावण के मुंह पर। रावण रामचंद्र जी के सामने तू कुछ भी नहीं। जब उन्होंने थू कर दिया तो रावण को बहुत क्रोध आया, लेकिन भूल गया कि अभी मेरी मृत्यु 10 दिन में, और फिर भी लड़ने को तैयार था। क्यों लड़ने को तैयार था? क्योंकि अहंकार था। शिव जी को जाके बोला, मैं मान गया हूं कि भगवान राम ही परम भगवान है, लेकिन फिर भी अब मैं मरन तो जाऊंगा लेकिन सर कभी नहीं झुकाऊंगा। सर नहीं झुकाया अहंकार के वश। तो इस तरह से जो ये रावण है इसका भी वध हो जाता है। तो हमने राम की लीलाओं को सुना, हमने सीता मैया की लीलाओं को सुना, धनुष शिव धनुष की लीला को सुना, रावण की भी लीला को सुना, और अब अंत में एक लीला मैं आपको वर्णन करूंगा, उसके बाद हम समापन करेंगे। जीवन में कुछ भी करिएगा आप सब जो यहां पर विराजमान है, लेकिन भक्तों पर संदेह कदापि मत। किस पर संदेह नहीं करना? जिसने भक्त पर संदेह किया वो फिर उसका दोषी बनेगा, द्वेषी बनेगा, और एक दिन उसका नाम जब छूट जाएगा, और नाम जब गया तो सब कुछ गया। जिस दिन हरि नाम चला गया उस दिन सब कुछ चला गया, राम नाम चला गया सब कुछ चला गया। तो एक बार हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा, हे राम, मैं देखता हूं कि रात दिन आपकी कथाओं का वर्णन चल रहा है, कभी द्वारका वाले करते हैं, कभी ईस्ट ऑफ कैलाश वाले करते हैं, कभी पंजाबी बाग वाले, कभी वृंदावन वाले, कभी पंडाल लगा के बाबा जी करते हैं, कभी अयोध्या में, कभी नैमिषारण्य में, कौन सी कथा सुनूं जो प्रमाणिक हो? क्योंकि बड़ा मन करता है आपकी कथाओं में जो आनंद है वो आनंद कहीं मिलता ही नहीं है। तो भगवान राम बोले, अच्छा कथा सुनना चाहते हो हनुमान, तो ठीक है, एक प्रमाणिक वक्ता है वो बहुत सुंदर कथा करते हैं, तुम वहां जाओ। तो ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी पहुंच गए और वक्ता जो थे वो कथा सुना रहे थे। उन्होंने कथा में कहा, बालकांड चल रहा था, सुंदरकांड पहुंचा, सुंदरकांड वाले दिन हनुमान जी ने प्रवेश किया और उन्होंने कहा, हनुमान जी खड़े थे समुद्र तट पर, सभी वानरों ने कहा हनुमान जी आप ये हैं, हनुमान जी आप वो हैं, और उनके गुणों का वर्णन करते करते हनुमान जी ये विशाल काय बन गए और उन्होंने क्या किया, एक बार क्या बोला, जय श्री राम। ऐसे तो कभी नहीं पहुंचोगे, क्या बोला, वैसे एक बार बोला और एक पैर इधर और एक पैर उधर, त्रिकुट पर्वत पर पैर रख दिया और वहां जाकर के क्या किया, रावण से बोला सीता मैया को छोड़ दे वरना लंका जला दूंगा। रावण बोला लंका जलाएगा, तो उन्होंने कहा हाँ जला सकता हूं, तुझमें इतनी शक्ति है, कहा हाँ है, और लंका जला दी। तो हनुमान जी बोले कथा तो बढ़िया चल रही है लेकिन मैं काम इतना मेहनत का किया इतने छोटे में निपटा दिया, मैंने इतनी मेहनत करी, जय श्री राम करके जंप मारी, पहले स्वर्ण पर्वत आया, सिंगी का राक्षसी आई, फिर लंकनी आई, उसको मारा, अंदर घुसा, सूक्ष्म रूप बनाया, मेहनत करी, अशोक वाटिका गया, पूंछ पर बैठा, आग लगी जगह जगह, कॉर्नर कॉर्नर पे जैसे दामोदर अष्टक के बाद दिया जलाते हैं, जगह जगह पर मैंने अग्नि लगाई, लंका जलाई, इतनी मेहनत करी और इसने क्या किया, ये तो बड़ा ईजी है। तो रावण जी को, रावण की वो हनुमान जी को रावण की कथा सुनकर और उस वक्ता की कथा सुनकर आनंद नहीं आया। रामचंद्र जी बैठे थे और हनुमान जी आए, बोले हनुमान को देखकर रामचंद्र, हाँ कथा सुना है हनुमान आनंद मंगल, कथा तो सुनी प्रभु लेकिन आनंद आपके नाम में तो आनंद ही है, खैर दुखी लग रहे, थोड़ा पूर्ण संतुष्ट नहीं दिख रहे, क्या बात है, वक्ता कोई ठीक नहीं था क्या, संडे दिन तुम चले गए प्रशांत मुकुंद प्रभु को सुनने, तो नहीं मजा नहीं आया, अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर रामचंद्र जी बोले लगता है कुछ प्रॉब्लम है, कहा देखिए भगवान मैंने इतनी मेहनत करी आपकी लीला में, आप जानते मैं जानता हूँ, ये वक्ता को क्या पता, थोड़ा इधर उधर कॉपी पढ़ लिया और करके लंका जला दी, इसके ऐसे थोड़ी एक बार में वहां पहुंचा दिया, इतनी मेहनत की मैंने। हनुमान जी की बात सुनकर भगवान बोले देखो संत पर संदेह नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी तुम्हें संदेह हो रहा है, संदेह मत करो। हनुमान बोले नहीं प्रभु आप कह रहे हैं मैं मान गया हूं लेकिन फिर भी पूर्ण संतुष्टि का अनुभव तो नहीं। तो भगवान राम अपनी अंगूठी से खेल रहे थे अनामिका से, खेलते खेलते अनामिका को ऐसे करके गिरा दिए, अनामिका गिरी तो बोले हनुमान उठाना जरा अंगूठी, तो हनुमान जी अंगूठी पकड़े, अंगूठी आ गए। हनुमान को बताया जाता है हनुमान मन की गति से चलते थे तभी तो समुद्र लांग गए, समुद्र को लांगने के लिए मन की गति से चले, तो अंगूठी उनकी गति से भी तेज चल रही थी क्योंकि वो भगवान के मन की गति से चल रही थी। तो वो भागी 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 इतनी जोर से भागी और हनुमान जी भागते रहे भागते रहे भागते रहे भागते भागते अंगूठी एक गुफा में प्रवेश कर गई, गुफा में प्रवेश कर गई तो बाहर एक वानर खड़ा था ऐसे, उन्होंने देखा हनुमान जी, हनुमान जी बोले ए वानर हटो अंदर से अंगूठी लेनी है रामचंद्र जी, कहा तुम कौन हो, कहा मुझे नहीं जानते, रामचरितमानस के सबसे प्रमुख चरित्र राम के बाद राम के भक्त हनुमान। तो वानर हंसने लगा तुम भी हनुमान जी हो, तुम भी हनुमान जी हो, कहा अंदर जो बैठे वो हनुमान है बाबा, ये हनुमान गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान गुफा, ये नया हनुमान कहां से आया, रामचंद्र के साथ मैं बैठता हूं, मैं कथा करता हूं, मैं कथा सुनता हूं, राम को रोज देखता हूं, ये हनुमान। बोले मुझे अंदर जान दो, बोले ऐसे कैसे अंदर जाने दो, युद्ध करना पड़ेगा, कहा अरे युद्ध करने की बात करता है, अरे ऐसे मसल दूंगा जैसे गुड नाइट लगाकर मॉस्किटो मसला जाता है। तो हनुमान जी की बात सुनकर वानर बोला लगता है थोड़ा दमखम वाला व्यक्ति है, अंदर गए, अंदर जाकर बोले रुको मैं पूछ कर बताता हूं, तो अंदर पूछ कर आए, फिर बोले कि ठीक है हनुमान जी कह रहे हैं बंदर को ले आओ, कहा मुझे बंदर बोला, बंदर जानते हो कौन हूं, कहा अंदर चलो सब पता चल जाएगा तुम कौन हो। तो अंदर गए, अंदर देखा एक विशाल काय पर्वत के ऊपर, विशाल पर्वत गुफा के अंदर, उसमें एक विशाल हनुमान जी बैठे, विशाल हनुमान जो कि अगर एक पैर इधर रखे समुद्र तट के तो दूसरा पैर त्रिकुट पर्वत पे रखे, एक रामेश्वरम में एक श्रीलंका में, इतने विशाल हनुमान जी बैठे और उनके शरीर से तेज प्रकट हो रहा है करोड़ों करोड़ों सूर्यों का, इतना अंदर रोशनी और हजारों लोग बैठ करके उनको सुन रहे हैं और वो नाम जप कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, राम राम राम, और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो ये हनुमान जी बोले, यार ये क्या चक्कर है, ये भी राम राम बोल रहे हैं, ये विशाल हैं, कोई मेरे पूर्वज तो नहीं है। तो उन्होंने कहा जय श्री राम, अभी पहले तो बोलते थे जय श्री राम, अभी बोल रहे जय श्री राम उनके सामने देख के हनुमान जी। तो हनुमान को देख के बोले, आओ आओ हनुमान बैठो, क्या हुआ, क्यों दुविधा में लग रहे हो। कहा इतने विशाल आप कौन है। कहा हनुमान। कहा पर केसरी नंदन, मैं हनुमान, पवन पुत्र मैं हनुमान, आप कौन से वाले हनुमान। तो उन्होंने कहा कि मैं भी पवन पुत्र हनुमान, लेकिन ये विशाल का शरीर। तो हनुमान जी ने कहा, विशाल काय हनुमान जी ने कहा कि देखो, हर त्रेता युग में भगवान राम आते हैं, ब्रह्मा जी के 12 घंटे के अंदर वो 14 मनु की रचना करते हैं, और एक मनु 71 चतुर्युग में जाता है, और एक चतुर्युग 43 लाख वर्षों का होता है, और उसमें जब सत्युग त्रेता द्वापर चतुर्युग की साइकिल आती है, उसमें जब त्रेता युग आता है तो उसमें हर बार भगवान राम आते हैं, और ऐसे 71 चतुर्युग बार जब भगवान राम आ जाते हैं तो मनु समाप्त होते हैं, और ऐसे 14 मनु समाप्त होने पे ब्रह्मा जी के 12 घंटे समाप्त होते हैं। ब्रह्मा जी के 12 घंटे की रात्रि होती है, ऐसे 365 दिन तब समाप्त होते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक वर्ष समाप्त होता है। ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहने वाले ब्रह्मा जी के जीवन में कितनी बार भगवान राम लीला करते हैं। तो तुम्हें तो सिर्फ एक ही लीला याद है, एक लीला में मैं हनुमान था, इस लीला में तुम हनुमान हो। ऐसा नहीं है कि हनुमान एक ही हनुमान है, कई हनुमान हैं, कई शिव हैं, 11 रुद्र हैं, लेकिन कृष्ण एक ही हैं, राम एक ही हैं। विभिन्न रूप लेते हैं कौन, हनुमान को कई बार अलग अलग रूपों में आना पड़ता, जैसी लीला भगवान करते हैं उस लीला का सहयोग करने। तो हनुमान जी बोले, अच्छा इसका मतलब कई हनुमान है, कई गणेश है, गणों में जो ईश है, गणों के जो हेड है वो गणेश है, गणेश एक गद्दी है। बोले तो ऐसे ही तुम हनुमान हो, एक हनुमान नहीं है। तो अच्छा, तब उनको एहसास हुआ कि वो भक्त जो बता रहे थे वो उनके चिंतन में उस कल्प की लीला चल रही थी, और उस कल्प की लीला का चिंतन करते करते उन्होंने कहा, और लंका जल गई, ओ मैंने तो मेहनत वाला रोल निभाया, ये हनुमान जी ने इजी वाला रोल निभाया, ठीक है ठीक है, उनको समझ में आया। लौट कर अंगूठी उठाई, रामचंद्र जी के पास आए, रामचंद्र जी बोले, अरे अंगूठी लाने में इतनी देर। का प्रभु आ बिना, लीला पुरुषोत्तम है, लीलाएं करते रहते हैं, और आपने लीला ऐसी करी कि मैं पूर्ण रूप से क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। इसलिए आज की शिक्षा ये है कि हमें भगवान राम की कथाएं तो सुननी चाहिए, लेकिन भक्तों पर संदेह रहित होकर के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, 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 राम।